शांति दिव्यता की खुशबू फैलाने आज हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप नागपुर की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1972 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1993 में आपने एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। तभी से आपके दिलो दिमाग में ये सवार है कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। इसलिए ज्ञान की गहराई में भी खूब उतरे, खूब एक्सपेरिमेंट्स किए। 1976 आपके जीवन का वह स्वर्णिम अवसर बना जब आप मधुबन में आकर अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। और आते ही शिव भोलेनाथ के भंडारे में टोली किचन संभालने लगे। तब से आज दिन तक आप हेडक्वार्टर के तीनों कॉम्प्लेक्स पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के टोली किचन आपके निर्देशन पर चलते हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार आपको टोली वाले आत्म प्रकाश भाई जी के नाम से जानता है, तो पूरे ब्राह्मण परिवार को भाई जी टोली खिलाकर बाबा के साथ जोड़ने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा की बोली को भी बहुत सुंदर रीति सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखते हैं, जिससे हमारा पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की मदद मिलती है। अव्यक्त बाप दादा ने आपको वरदान देते हुए कहा है कि आपने अपना ऑक्यूपेशन बनाया है कि बाप के साथ विश्व परिवर्तन करने का। तो विश्व परिवर्तन करने के लिए बाबा ने आपको पूरे विश्व का भ्रमण भी करवाया है, जिसमें आज तक आपने 90 देशों में जाकर बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है और जल्द ही 100 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं भाई साहब, 95 कंप्लीट। ओके, साथ साथ ब्राह्मणों का पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके अनेक आर्टिकल्स लिखे हैं जो पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, आपके इंटरव्यूज रेडियो में भी आते रहते हैं और आपके लेक्चर्स टीवी में अक्सर प्रसारित होते रहते हैं। आप युवा प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज का विषय निरंतर याद में रहने की युक्तियां भाई जी से हम सुनेंगे, क्योंकि भाई जी का बहुत अच्छा चार्ट रहा है। हमने सुना है शुरुआत में आप बिल्कुल चार्ट बना के रखते थे, हर 5 मिनट का बाबा की याद का चार्ट बाबा, आज भाई जी से सुनेंगे हम।
ओम शांति। निरंतर योग में स्थित रहने की युक्तियां। बाबा मुरली में कहते हैं, मुझे याद करो, सदा मुझे याद करो। कोई मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने ये इशारा नहीं दिया है। क्यों बाबा हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, क्या इसके पीछे का राज है? हाँ जी, हम भूल जाते इसलिए। इस संसार में हमारे सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाले एक बाबा है, है ना? तो बाबा चाहते हैं मेरा हर एक लार बच्चा, हर एक लाल माला माल हो जाए और मेरा नाम रोशन करे, बाला करे। तो माला माल होना अर्थात सर्व खजानों से भरपूर होना, शक्तियों से भरपूर होना। और ये सिद्धांत है कि हमेशा एनर्जी हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ ऑटोमेटिक प्रवाहित होती है। ये नियम है, सिद्धांत है। तो इस संसार में बाबा ही है जो सर्व शक्तियों के सागर है, स्रोत है, पावर हाउस है। जब बाबा को हम याद करते हैं तभी हमें शक्तियां मिलती हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को याद करते हैं तो हमारी शक्तियां खर्च होती है, नष्ट होती है, खत्म होती है। और वर्तमान समय है शक्तियों का स्टॉक जमा करने का। तो बाबा देखो हमारा कितना कल्याण चाहते हैं। समय के पहले मेरे बच्चे शक्तियों के खजानों से भरपूर, इसलिए बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, मुझे निरंतर याद करो, है ना? एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई बाबा की याद से होती है। आत्मा रूपी बैटरी योग से चार्ज होती है, शक्तियों का खजाना हमारे पास बढ़ता जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य हो मुझे जास्ती से जास्ती बाबा की याद में रहना है। हमारी जो रेस है किसमें है, हमारी रेस योग में है। ज्ञान, धारणा, सेवा, ये तीन सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। मेन हमारा योग का है। तो निरंतर बाबा की याद में कैसे रहें, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ बातें, युक्तियां रखना चाहता हूं जो आपको बहुत मदद करेगी। उसमें भी 10 युक्तियां आपके सामने रखता हूं। पहली युक्ति, निरंतर बाबा को याद करने के लिए हमें निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना जरूरी है। जब आत्मा की स्मृति रहती है तभी बाबा की याद आती है ऑटोमेटिक। देह की स्मृति रहती है तो देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध याद आते हैं, लेकिन आत्मा की स्मृति रहती है तो बाबा की याद सहज रहती है। इसलिए कहते हैं खुद को देखते हैं तो खुदा को देख सकते हैं। खुद की याद रहती है तो खुदा की याद स्वतः ही रहती है। इसलिए सारे दिन भर में बीच बीच में हमें विदेही स्थिति की तपस्या करते जाना है। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट पहला ये है, यही पहला पाठ, यही अंतिम पाठ और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ये हमारे दिमाग में हमें बिठा देना है, ठीक है। तो 84 जन्मों का होमवर्क है, 63 जन्म हमारा देह का बहन आत्मा में कूट कूट के भरा पड़ा है, उसको हटाना है। 21 जन्म नेचुरल आत्मा का भान रहे, वो अभ्यास भी जुटाना है अभी घर वापस जाने के पहले। तो इतना बड़ा होमवर्क हमें बाबा ने दिया है तो उसके लिए निरंतर विदेही स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते रहे। दूसरी बात, निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए सदा समानधारी रहने का अभ्यास करते रहे। जब हम समान के सिंहासन पर बैठते हैं तो मन बुद्धि हमारी हल्की फुल्की होती है, नशे में खुशी में झूमती है और स्वतः ही हमें परम धाम की ओर बाबा के पास ले जाती है और बाबा के संग में बिठा देती है, जिससे बाबा की याद सहज होती है। इसलिए समान का हाथ हमें बाबा का साथ दिलाता है। समान का हाथ हमें बाबा का साथ दिलाता है। हम सभी बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी साधारण आत्मा इस सभा में नहीं है। और जो बहुत रॉयल आत्माएं होती है वो हमेशा सिंहासन पर बैठती है, नीचे जमीन पर नहीं बैठती है। इसलिए बाबा ने जो हमें समान का सिंहासन दिया है उस सिंहासन पर हमें डटे रहना है, सिंहासन को नहीं छोड़ना है। क्योंकि समान में स्थित रहने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। ये घटिया दुनिया है हमारी दुनिया, वो है अलौकिक दुनिया है पारलौकिक दुनिया, ये तो माया की दुनिया है। तो इस दुनिया से जितना न्यारा रहते हैं उतना ही बाबा का प्यारा अनुभव करते हैं। इसलिए समान के सिंहासन पर हमें हर हालत में बैठकर रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। माया हमें सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करती है, हमने उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भगवान ने सिंहासन हमें दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। ठीक है, तो स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखें। कोई मान दे न दे मुझे कोई उसकी परवाह नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं। भगवान ने मुझे बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, बहुत सम्मान दिया है, इसलिए मुझे अपने सम्मान में मस्त रहना है। ठीक है, तीसरी युक्ति, बाबा की याद में निरंतर रहने के लिए सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करने की कला हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना एक दो घंटे के बाद बोर होता है। ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा न्यूनेस चाहता है, नवीनता चाहता है, वैरायटी चाहता है। तो तार बुद्धि की बाबा से किसी तरह से जुटी रहें, किसी भी संबंध से रहे कोई बात नहीं। तो इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक हमें बाबा की याद में मस्त रहना है। इसलिए विभिन्न संबंधों के द्वारा बाबा को याद करने का अभ्यास बढ़ाते रहें। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे 24 घंटा मैं आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। तो हमें बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है, किसी न किसी संबंध से बाबा के साथ बुद्धि को जुटाकर रखना है। ठीक है, क्योंकि बाबा में वो ताकत है सर्व संबंधों की अनुभूति कराने की। इसलिए हमें बाबा को निरंतर बिजी रखना है, बाबा की याद में सदा मस्त रहना है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अलग अलग संबंधों में हमें बाबा को याद करते रहना है ना? बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, सखा के रूप में, बच्चे के रूप में, साजन के रूप में, माँ के रूप में, गाइड के रूप में, सर्जन के रूप में, और सर्वोच्च रक्षक के रूप में, और धर्मराज के रूप में, किसी न किसी तरीके से बुद्धि को बाबा से जोड़कर रखना है। ठीक है, चौथी युक्ति, निरंतर बाबा को याद करने के लिए साक्षी दृष्टा बढ़ाते रहें। जितना साक्षी उतना साथी हम अनुभव करते हैं। इस दुनिया से हमें साक्षी होकर रहना है, अपने पार्ट से भी साक्षी होकर रहना है, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठकर इस ड्रामा को हरेक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं, न्यारे होकर देखते हैं, किसी का भी प्रभाव बाबा के इस पर नहीं पड़ता है। ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन से इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हैं। ऐसे हमें भी परम धाम निवासी या सूक्ष्म वतन निवासी बनकर रहना है, और अपने पार्ट को भी और अन्य आत्माओं के पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। साक्षी अर्थात न्यारा होकर देखना है। तो जितना साक्षी उतना साथीपन का अनुभव हमें बाबा का होता है। अगर इस ड्रामा में साथी होकर रहेंगे तो बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां से साक्षी हो जाएं, यहां से डिटैच हो जाएं और बाबा के साथ अटैच हो जाएं, है ना विनोद भाई? ऐसे है ना? तो ये हमें अभ्यास करना है, अंदर ही अंदर अभ्यास करना है। अब शांति। पांचवी युक्ति है, निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए हमारा लक्ष्य अमृत वेले से ही रहें कि आज मुझे याद और सेवा का बैलेंस रखना है। क्योंकि अमृत वेले हम बाबा को याद करते हैं और जैसे सेवा क्षेत्र पर जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं और बाबा की याद भूल जाते हैं, सेवा में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य होगा कि आज मैंने याद और सेवा का बैलेंस रखना है, तो स्वतः ही बाबा की याद बढ़ती जाएगी। भाई दीदियों के लिए तालियां तो बजाओ, हमारी सारी दीदियां बैठी है यहाँ। दीदियों ने इतने दूर से आपको लाया, आसाम कहाँ है देखो, ओ दुनिया का कोना, हाँ भारत का कोना दूसरा, वहां से लाया सारी दीदियों ने हमारे। तो याद और सेवा का मुझसे बैलेंस रखना है, याद में रहकर सेवा करना है। तो जो हम कर्म करते हैं बाबा की याद में, तो कर्मों में भी दिव्यता आती है। तो डबल कमाई हमें करना है, अभी सिंगल कमाई करने का समय समाप्त हो चुका है, वन इन वन का समय पूरा हो चुका है, टू इन वन, थ्री इन वन, फोर इन वन, ये कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। इसलिए याद भी हो और बाबा की सेवा भी साथ साथ चलती रहे, ये लक्ष्य अगर हम अमृत वेले टाइट रखते हैं तो ऑटोमेटिक बाबा से हमें शक्ति मिलती है और उस बैलेंस को हम सारे दिन भर में मेंटेन करते जाते हैं। याद रखना है, बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती है और संगम युग है ब्लेसिंग्स, दुआओं को जमा करने का युग। इस जन्म में हम चाहे जितनी दुआएं जमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है, जिसको पुण्य कर्मों का खाता लोग कहते हैं। तो इसलिए मुझे बैलेंस रखकर चलते जाना है, लेकिन बैलेंस रखने के लिए ज्ञान और योग की शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी तो आत्मा मजबूत हो जाती है, शक्तिशाली होती है, तो हम याद और सेवा का बैलेंस, ज्ञान और योग का बैलेंस, सेवा और योग का बैलेंस, साधन साधना का बैलेंस ऑटोमेटिक रखते जाते हैं। ठीक है, पांचवी युक्ति, छठवी युक्ति है, छठवी युक्ति है निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए सबके प्रति हमें शुभ भावना शुभकामना रखना है। सबके प्रति महान आत्मा के दिल में सबके प्रति क्षमा भावना, दया की भावना, शुभ भावना सदा पनपती रहती है। हम स्वयं को बड़े समझते हैं, महान समझते हैं, तो बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है और बड़े के दिल में हमेशा सबके लिए शुभ भावना पनपती रहती है। इस संगम युग में सब आगे बढ़ते रहें, सबका भला होता रहे, सब उन्नति को पाते रहें, सब माला माल होते जाएं, ये शुभ भावना सबके प्रति हमारी हो, क्योंकि ये हमारा सबका परिवार है। We are the children of one and same father. ये बेहद की कुटुंब की भावना हमारे दिल में होगी तो सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना होगी, क्योंकि योग को तोड़ने वाली शक्ति है अशुभ भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना, नकारात्मक भावना। इसलिए मेरे रास्ते में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके प्रति मेरे मन में अशुभ भावना हो या किसी के प्रति बहुत लगाव हो, क्योंकि हम एकांत में बैठते हैं तो ये दोनों में से कोई ना कोई व्यक्ति हमारे बुद्धि में टपकता है, बाबा की याद तोड़ देता है। किसी के साथ बेहद प्यार होता है वो व्यक्ति, या किसी के प्रति घृणा भाव द्वेष भाव होता है वो व्यक्ति, दोनों साफ हमारे नहीं होना चाहिए, रास्ता साफ करना है। इसलिए बहुत सुंदर युक्ति है, जैसे बाप दादा के दिल में सबके प्रति शुभ भावना है रहती है, वो शुभ भावना का चश्मा हमें पहनना है और सबके प्रति शुभ भावना रखना है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति कैसा भी व्यवहार हमारे प्रति करें, फिर भी हमने शुभ भावना रखनी है। हो सकता है, हाँ जी, कोई हमारे लिए गलानी करता है, कोई हमारे लिए खड्डे खोलता है, कोई हमारा अपमान करता है सबके बीच में, उनके प्रति शुभ भावना रखना ये संभव है? बोलो ना, आसाम वाले आसामी वाले बताओ ना, हाँ? बहुत सुंदर युक्ति है। उसके लिए उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप या अंतिम स्वरूप देखना है, वर्तमान स्वरूप नहीं देखना है। वर्तमान स्वरूप सब में कमियां है, किसी न किसी कमी प्रकार की हर एक में है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कमी के बिना है, नहीं तो ब्रह्मा जी के पास बैठ जाता, ठीक है ना। तो हर आत्मा का हमें आदि अनादि स्वरूप और अंतिम फरिश्ता स्वरूप देखना है, तो सबके प्रति सदाशिव भावना पनपती रहती है, क्योंकि 63 जन्म हमारा कई आत्माओं के साथ नेगेटिव अकाउंट है, उसको भी हमने क्लियर करना है, हिसाब का किताब हमने पूरा करना है। इसलिए बाबा हमें ज्ञान और योग की पालना देते हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र देते हैं, उनको हमें प्रयोग में लाना है और सारे दिन भर में अपनी स्थिति को निर्विघ्न रखना है और सबके प्रति शुभ भावना रखना, ये पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। किसी एक भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना होगी तो संपूर्ण पवित्रता का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बाबा से, भाई क्यों, वो एक व्यक्ति कोई भी होगा उसके कारण मेरा सर्टिफिकेट लटका हुआ है वहां, रखो ना शुभ भावना, ठीक है। दूसरी बात, सातवीं युक्ति, बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करना है तो उसके लिए व्यर्थ संकल्पों का लीकेज हमें खत्म करना है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था व्यर्थ संकल्प होना भी अपवित्रता है, क्यों, क्योंकि बाबा की याद तोड़ती है, किसी के भी प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अशुद्ध तो छोड़ो व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो भी वो अपवित्रता कहलाती है, वो भी एक लीकेज है। लीकेज को बंद करेंगे तभी शक्तियों का स्टॉक हमारा होगा और स्थिति शक्तिशाली होगी, निरंतर बाबा की याद बढ़ती जाएगी। इसलिए व्यर्थ के लीकेज को हमें बंद करने के लिए 3 युक्तियों को अपनाना है। पहली युक्ति है आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, दूसरी युक्ति है ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना, और तीसरी युक्ति है मन को सदा ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रखना, तो व्यर्थ नहीं चलेगा और खाली मन शैतान का घर कहते हैं वो शैतानी नहीं करेगा, बाबा की याद में सदा मस्त रहेंगे, ठीक है। तो मनन चिंतन को हमें बढ़ाना है, मन को खाली नहीं छोड़ना है, कि मन रूपी जीन है ना, याद की यात्रा में सीढ़ी को चढ़ता रहे उतरता है, चितड़ता रहे उतरता, उसको अगर फ्री रखेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी, 8वीं युक्ति, 8वीं युक्ति है निरंतर बाबा को याद करना अगर है तो हमें क्या करना है, याद का चार्ट रखना सीखना है। बाबा कहते हैं उन्नति का साधन याद का चार्ट है, क्योंकि मन और बुद्धि ये द्वापर युग से लेकर हमारे कंट्रोल के बाहर रहे, आवारा की तरह घूमते रहे, भटकते रहे। अभी मन और बुद्धि को हमने कंट्रोल में लेना है, नियंत्रण और अनुशासन में लेना है, तो उसके लिए याद का चार्ट रखना ही एक युक्ति, और कोई दूसरा तरीका नहीं। क्योंकि ये दो आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं मन बुद्धि, इन दोनों बच्चों ने ही माया के संग में रहकर सारे खजाने लुटा दिए। अब इनों को हमने ट्रेनिंग देना है और बाबा के संग में रहकर खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करना है। इसलिए याद ही चार्ट ही हमें सिखाता है मन बुद्धि को कैसे बिजी रखें, बाबा की याद में सदा कैसे मस्त रहें, ये याद का चार्ट हमें सिखाता है। इसलिए कहते हैं चार्ट हमें स्मार्ट बनाता है, आत्मा को स्मार्ट बनाता है। कैसे? सर्व शक्तियों से भरपूर कराता है, दिव्य गुणों की धारणा ऑटोमेटिक होती है, आत्मा सजी सजाई रहती है, सर्व शक्तियों से भरपूर रहती है, स्मार्ट रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए याद का चार्ट लिखने पर थोड़ा अटेंशन अगर हम देते हैं तो उससे बहुत हमें मदद मिलती है, ठीक है। नवी युक्ति है निरंतर बाबा को याद करने के लिए सदा लाइट रहना सीखे। जिम्मेदारी का बोझ हमें बाबा ने जो दिया है, हर एक को जिम्मेदारी बाबा ने दी है, छोटी मोटी दी नहीं है, दी है। तो जिम्मेदारी के बोझ को हमें बाबा के कंधे पर रखना है और खुद को एकदम हल्के फुल्के लाइट अनुभव करना है। लाइट वस्तु ही ऊपर जाती है, बाबा के तरफ जाती है मन बुद्धि। इसलिए संगम युग में ये बहुत सुंदर युक्ति है, जिम्मेदारी का बोझ बाबा को हमने दे देना है। हम देते तो हैं लेकिन वापस ले लेते। क्यों लेते भाई? हमें थोड़ा सा संशय आता है, कोई भी काम की जिम्मेदारी हमारे पर होती है तो हम सोचते हैं पता नहीं बाबा मुझे मदद करेगा भी या नहीं, थोड़ा संशय आता है, इसलिए पुनः वापस ले लेते हैं। फिर दो के बजाय अकेले हो जाते हैं और फिर भारी हो जाते हैं, बाबा की याद कहां रहेगी। सदा हल्के रहते हैं, हल्की माना है लकी, हल्की आत्मा हमेशा उड़ती रहती है, बाबा की याद मस्त रहती है और कमाई करती रहती है, इसलिए लक की है, लक का सितारा हमेशा चमकता रहता है। इसलिए संगम युग में एक स्लोगन याद रखना है, मैं कोली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। रॉयल कुल वाले जो है ना बोझा नहीं ढोते हैं, कुली ढोते हैं। हम साधारण कुली नहीं है, हम तो सब रॉयल बाबा के बच्चे हैं। रॉयल जो होते हैं वो हमेशा हल्के रहते हैं, देखा ना, एयरपोर्ट पर देखेंगे या रेलवे स्टेशन पर जो रॉयल होंगे ना, वो कोली के सिर पर वो बड़ लगेज होगा, ये मस्ती से चलेंगे ठाट से, क्यों रॉयल है। तो हमें भी बोझ नहीं उठाना है, बोझ उठाना है हल्के व्यक्ति की निशानी है ना। तो इसलिए जिम्मेदारी का बोझ बाबा कहते मुझे दो ना, मैं आया ही हूं आपको हल्का रखने के लिए, मुझे दो, हल्के रहो, है ना। तो ब्रह्मा बाबा से हमने सीखना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सारे यज्ञ की जिम्मेदारी, संसार के प्रजा का पिता, सारे संसार को आगे बढ़ाने की चिंता उनके सिर पर है, लेकिन बाबा हमेशा सदा हल्के रहे। बस बाबा बैठा है ना, शिव बाबा, मैं क्यों चिंता करूं। तो सदा हल्के रहें, कर्म योगी का नंबर वन सैंपल बन के रहें, और नंबर वन बाबा ने लिया, ठीक है। दसवीं युक्ति, मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए कभी कभी हमारी रुचि कम होती है, करना तो चाहते हैं, अमृत वेले बड़ा संकल्प होता है, आज मैंने बहुत अच्छी तरह से योग का चार्ट बनाना है, लेकिन दिन में वही के वही बात रहती है। ये मनमनाभो का मंत्र का जाप करने के लिए रुचि कम क्यों होती है बताओ है जी। मध्याजी भव का लड्डू जो बाबा देने वाले हैं ना, वो लड्डू भूल जाते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो करने के पहले सोचते हैं इससे मुझे मिलेगा क्या, कोई भी काम लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ये काम अगर करूं तो मुझे मिलेगा क्या, तो ये 21 जन्मों का लड्डू बाबा देना चाहते हैं, दे रहे हैं, लेकिन कैसे मिलेगा? मनमना भव का मन लड्डू बजाएंगे, मनमना भव का मंत्र करेंगे, तभी हमें ये लड्डू मिलेगा। इसलिए मध्याजी भव के मंत्र का भी जाप करते रहें तो मनमना भव के मंत्र का जाप करने में रुचि बनी रहेगी। बीच बीच में याद और वर्षा, मनमना भव मध्याजी भव, मनमना भव मध्य, दोनों को याद करें, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी न किसी युक्ति से हमें बाबा को याद करना है। याद को याद क्यों कहते हैं भाई? याद का उल्टा क्या है? दया। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना दया स्वयं पर करते हैं, खजानों से स्वयं को माला माल करते हैं। अब याद नहीं करेंगे तो खुद पर दया तो छोड़ो, दूसरों पर कहां से करेंगे? खुद पर भी नहीं और दूसरे पर भी नहीं। तो चले हम 10 मिनट के लिए पावरफुल योग करेंगे, क्योंकि आगे की जो दिनचर्या है थोड़ा बिजी है। सभी सीधे बैठेंगे, ताली बजाएंगे थोड़ा एक बार। सीधा बैठेंगे, सीधा। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जग मग रही हूँ। मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मस आत्म ज्योति के चहुओं सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज मस आत्मा ने धारण किया है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार सूर्य चंद्रमा तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। जा रहे हो। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हो, जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मज आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की सुंदर ड्रेस यार। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाली लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओह, मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राण आधार मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसा निरंतर आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति बाबा से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। मज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति।
सभी ने अच्छी अनुभूति की, क्लास का लाभ लिया। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, आपके लिए खास अमूल्य समय निकाल कर आए।